ஓம் சாந்தி. பாபா நே ஹம் சப் பச்சோ கோ டபல் ஸ்டூடெண்ட் பனாயா ஹை. ஆப் சப் ஸ்டூடெண்ட் தோ ஹை லேகின் இஸ் ஈஸ்வரிய விஸ்வவித்யாலய கே பி வித்யார்த்தி ஹை. ஜெய்சே உஸ் ஸ்கூல் கே அந்தர் அநேக விஷயோ பர் ஆப்கோ படாய் மில்தி ஹை, ऐसे ही ஈஸ்வரிய விஸ்வவித்யாலய கே சார் முக்கிய விஷய பாபா படாத்தா ஹை. ஒரு சாரோ விஷயம் கோஹி முரளி கே மாதம் சே படாத்தா. வைசே தோ முரளி கே பாரே மே ஆப் சப் ஜானே ஹோ, கௌன் கௌன் முரளி சுனத்தா ஹை, ஹாத் உடாஓ. அச்சா சப் சுனத்தே. तो मुरली कैसे चली, मुरली का महत्व ब्राह्मण जीवन में क्या है, इसको मुरली क्यों कहा जाता. वैसे तो मुरली के नाम से शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्कूल में भी पढ़ाते हैं कि श्री कृष्ण मुरली बजाते थे. कहाँ बजाते थे? श्री कृष्ण का जन्म कहाँ दिखाया है भारत के अंदर? बोलो, कौन बोलता है? कहाँ? मथुरा के अंदर, यूपी में मथुरा वृंदावन, ये श्री कृष्ण का जन्म स्थान दिखाया हुआ है. और जब श्री कृष्ण की पालना हो रही थी तो उस समय वो गाय चराते थे. दिखाते हैं कहानी के अंदर, गऊपाल थे. तो गायों को लेकर के जब जंगल में जाते थे तो उनके हाथ में एक मुरली होती थी, बांसुरी जैसी. तो जब वो बांसुरी बजाते थे, मुरली बजाते थे, तो गऊ के साथ साथ ग्वाल बाल सब उसको सुनने के लिए भागते थे. तो इसलिए मुरली का बहुत महत्व है. मथुरा में वृंदावन में वहां पर एक बगीचा बनाया है जिसका नाम दिया है मधुबन. और उस मधुबन में बताते हैं श्री कृष्ण जी गाय चराने आते थे और यहाँ पर वो मुरली बजाते थे, कदम का पेड़ है उसके नीचे बैठ करके. और जब वो मुरली उनकी बजती थी तो गोप गोपियां सब मुरली सुनने के लिए भागते थे. लेकिन ये बाबा की मुरली वो काठ की मुरली नहीं है, बांस की मुरली नहीं है, ये है, बोलो क्या है ये? ये है ज्ञान की मुरली. ज्ञान सागर शिव बाबा जब इस धरा पर आए, इस नर्क को स्वर्ग बनाने के लिए, मनुष्य आत्माओं को देवता बनाने के लिए, तो उन्होंने ईश्वरीय विश्वविद्यालय खोला. और विद्यालय के अंदर उस निराकार शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के मुख से जो सुनाया उसको ही कहा गया ये मुरली है. तो 1937 में सिंध हैदराबाद के अंदर ब्रह्मा बाबा का जो लौकिक घर था, ब्रह्मा बाबा अपने लौकिक जीवन के अंदर गीता पाठ बहुत प्यार से करते थे. नारायण के अनन्य भक्त थे और गीता का रोज अध्ययन करते थे. तो उनके पास घर में पहले भी सत्संग चलता था, तो ब्रह्मा बाबा के सामने गीता होती. लेकिन जब शिव बाबा की प्रवेशता होने लगी तो गीता पढ़ने की बजाय शिव बाबा इनके मुख से बोलने लगे ऑटोमेटिक. और वो जो मुख से बोलने लगे वो सच्ची गीता जब ब्रह्मा के मुख से शिव बाबा की निकली तो गीता के ही महावाक्य वो प्रैक्टिकल गोप गोपियों ने जीवन में धारण किए. इसलिए जो धारणा होने लगी तो शिव बाबा के महावाक्यों को मुरली कहा गया. तो ये जो मुरली आप सब सुनते हो ये शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख से 1937 से शुरू की सुनाना. 12 साल तक तो कराची और हैदराबाद में रहे, वहां पर कोई बाहर की सेवाएं नहीं थी. बाबा मुरली या तो लिख देते थे हाथ से, दादियां बड़े पढ़ करके फिर क्लास में सुनाते थे. और कभी कभी बाबा जब बच्चों से डायरेक्ट मिलते थे तो बाबा की मुरली चलती थी, क्लास होता था। जैसे अभी क्लास हो रहा है ऐसे ही बाबा के सामने बच्चे बैठे होते थे और शिव बाबा उनके तन में आते थे और उनके मुख से जो बोलते थे वो महावाक्य मुरली बन गए। जो बाबा ने बोला वो मुरली बन गई। तो 1937 से लेकर के 50 तक तो हैदराबाद पाकिस्तान बना, वो पाकिस्तान के अंदर बाबा की मुरली चलती रही। लेकिन 1950 के बाद जब बाबा का पूरा ग्रुप सभी 400 भाई बहने माउंट आबू आए, तो माउंट आबू में जब बाबा की यहाँ मुरली शुरू हुई तो उस मुरली को सुनाने के लिए भाई बहने बाहर जाने लगे, सेवाएं शुरू की। और 1952 से 52 से भारत के अंदर केंद्र खुले। नोट रखना कि भारत में जो सेवाएं शुरू हुई, ब्रह्मा कुमारी के जो आश्रम खुले, वो सबसे पहले 1952 में 52 में शुरू हुई, शुरुआत हुई सेवा केंद्र खुलने की। और सबसे पहला सेवा केंद्र दिल्ली में खुला, कमला नगर में। दिल्ली के बाद फिर पंजाब में खुला, यूपी में खुले, कानपुर में, लखनऊ में, और धीरे धीरे इन सेवाओं का विस्तार होने लगा। तो बहने जहाँ रहने लगी, दादियाँ रहने लगी, तो बाबा फिर मुरली लिख करके उनको भेजते थे। तो मुरली इस जीवन की पढ़ाई का नाम है, जो हम पढ़ते हैं उसको मुरली कहते हैं। और मुरली के अंदर चार सब्जेक्ट हैं। चार सब्जेक्ट में पहली सब्जेक्ट है ज्ञान। ज्ञान क्या बाबा ने दिया, कौन सा ज्ञान दिया? आप लोगों ने सुना होगा 7 दिन का कोर्स, और उस 7 दिन के कोर्स में ज्ञान के 7 लेसन दिए जाते हैं। उन्हीं 7 लेसन में मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा असली पिता कौन है, मेरा असली धर्म क्या है, मेरा घर कौन सा है, मैं यहाँ पर किस लिए आया हूँ, मुझे कौन से कर्म करने हैं, कौन से कर्म पाप कर्म होते हैं, कौन से कर्म पुण्य कर्म होते, ये पूरा डिटेल में बाबा ने खुद निराकार शिव बाबा ज्ञान सागर ने ब्रह्मा मुख से हम सबको पढ़ाया। तो ज्ञान की सब्जेक्ट जो बाबा ने दी उसके द्वारा हम सबको ये परिचय मिला। क्या परिचय मिला? मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। ये जो बोल रहे हैं ना, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, हलचल में आ रहे हैं, कौन है, कौन है बोलो? वो है आत्मा, जो इस आँखों से दिखाई नहीं देती लेकिन चैतन्य शक्ति शरीर में इस भ्रकुटी के अंदर बैठ करके इस शरीर का संचालन करती है, इस शरीर को अपने कंट्रोल में रखती है। तो बाबा ने सबसे पहला यही पाठ हम सबको पढ़ाया कि आप ये शरीर नहीं हो, आप ये मेल और फीमेल, लड़के लड़की नहीं हो, लेकिन आप सभी आत्मा हो। और आपका धर्म क्या है? ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या जाति जो हम बना के बैठे हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, बाबा ने हम सबको बताया ये सब देह के धर्म, देह के जाति, आप देह नहीं हो, आप आत्मा हो, अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो, और आपका स्वधर्म शांति प्रेम पवित्रता है। तो बाबा ने ये ज्ञान किस लिए दिया, ये समझ किस लिए दी? जिससे सब प्रकार के भेदभाव लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाएं। हम सब एक पिता के बच्चे हैं। हम सब के कितने पिता हैं? 3 पिता हैं, एक नहीं, एक शरीर को जन्म देने वाला पिता जो हमारे लौकिक मात पिता हैं, जिनके घर में जन्म मिला। दूसरा है धर्म का पिता, जिसको कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, वो भी पिता है लेकिन धर्म का पिता, ब्राह्मण धर्म का पिता है, और तीसरा है आत्माओं का पिता, परम पिता, वो निराकार शिव बाबा जो सबका पिता है। तो उस पिता परमात्मा ने हम सबको ज्ञान दिया, समझ दी, बच्चे तुम आत्मा हो, तुम इस नाटक के अंदर पार्ट बजाने के लिए आए हो, तुम्हारा असली घर परम धाम है, वहां से इस घर में इस सृष्टि मंच पर पार्ट बजाने आए हो। आज भी बाबा सवेरे क्या बता रहे थे कि बहुत बड़ा मांडवा है, पोलार है, और उसके अंदर ये सृष्टि चक्र है, कोई भी सूर्य चांद तारा गणों में कोई दुनिया नहीं है। बेचारे कितना लाखों करोड़ों अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं, किस लिए? कहीं मंगल ग्रह पर, कहीं गुरु ग्रह पर दुनिया मिल जाए। तो बाबा ने हम बच्चों को पढ़ा दिया कि दुनिया एक है, नाटक एक है, नाटकशाला एक है, इसका क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर, मुख्य एक्टर एक है, और आप सब इस खेल के अंदर पार्टधारी हो। ये ज्ञान, ये समझ कोई दुनिया के अंदर नहीं देता। आत्मा का भी रियल ज्ञान बाबा ने दिया है हम सबको। कोई भी मनुष्य आत्माओं के पास आत्मा का भी रियल ज्ञान नहीं है। क्या कहते हैं? आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा निर्लेप है, आत्मा जो पाप आत्मा, महान आत्मा, पुण्य आत्मा, देव आत्मा बनती है, उसका ज्ञान भी लोगों के पास नहीं है। तो शिव बाबा जब आते हैं तो आत्मा का सत्य परिचय देते, पहचान देते, और इस पहचान से हम सब आत्माएं देह अभिमान से मुक्त हो जाती। जो रावण आता ना, जो आज बाबा ने मुरली में कहा कि शिव बाबा का भी कोई रूप नहीं है, रूप माना कोई उसको देख नहीं सकता, ऐसे ही रावण को भी कोई देख नहीं पाता, लेकिन जहां पर पांच विकार प्रवेश हैं वहां रावण व्यापक है। तो आज की मुरली आप सबने सुनी है, किसने किसने आज की मुरली सुनी, याद है सबको? आज बाबा ने कहा था ना, रावण क्या है? रावण हरेक के अंदर जो प्रवेश, विकार प्रवेश हुए, उसका स्वरूप है। तो इसलिए बाबा हम बच्चों को अपना परिचय भी देता, पांचों विकारों की भी पहचान देता, और पांच विकारों का आने का मूल कारण, प्रवेश होने का मूल कारण बताता कि हे आत्माएं, तुम जब अपने आप को भूल गई तो इन विकारों ने तुम्हारे अंदर प्रवेश कर लिया। तो ये ज्ञान, ये समझ स्वयं भगवान हम बच्चों को देता। सतयुग और त्रेता युग में आत्मा अपने स्वधर्म में स्थित है, इसलिए वहां पर रावण नहीं आता। रावण कब आता है? रावण की प्रवेशता कब होती है? द्वापर में, जब देह मान शुरू होता, जब आत्मा की पहचान गुम हो जाती, तब रावण का प्रवेशता हो जाती। तो द्वापर युग से रावण आया, माना पांच विकार नर और पांच विकार नारी, इन दोनों में जब पांच पांच विकार प्रवेश हो गए तो 10-30 वाला रावण बन गया। तो बाबा ने ये ज्ञान, ये समझ दे करके हम सबको विकारों पर जीत पाने के लिए पढ़ाया। तो ये पहली सब्जेक्ट ईश्वरी विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ाई जाती, इसमें आप सभी नंबर वन ले लेना। कोई पूछे आप कौन हो, तो ये देह का नाम, देह का धर्म, देह की जाति, ये तो सब जानते हैं, लेकिन मैं आत्मा हूँ, मेरा स्वधर्म शांति है, मेरा पिता असली परम पिता परमात्मा शिव बाबा है, मेरा असली घर इस शरीर के अंदर तो भ्रकुटी है, और असली घर परम धाम है जहां से हम आत्मा पार्ट बजाने के लिए आई हैं। तो बाबा ने हम सबको ज्ञानी तो आत्मा बना दिया, समझदार। तो आत्मा का ज्ञान दिया, फिर अपने घर का ज्ञान दिया। कब आए थे इस घर से? घर से, अपने घर से। आप सब अपने घर से कब आए? आज से 5000 साल पहले, जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ, सतयुग शुरू हुआ, तब देवता घराना पहले पहले उतरा। जो इस विद्यालय के विद्यार्थी हैं, वो सब समझते हो कि हम सब देवता बनने वाले हैं? कौन कौन देवता बनेगा? सब देवी बनेंगे या देवता? हैं? तो देवी देवता धर्म सतयुग के अंदर होगा, और पहले पहले हम अपने परम धाम घर से उस देवता की रेस में उतरेंगे। नर श्री नारायण, नारी श्री लक्ष्मी समान होगी, बच्चे श्री कृष्ण के समान, बच्चियां श्री राधे के समान होंगी, और उस समय का भारत क्या कहलाएगा? स्वर्ग, पैराडाइज, हेविन, बहिष्ट। तो ऐसे स्वर्ग की रचना करने के लिए इस कलयुग के अंत में परमात्मा को आना पड़ता, और आकर के यही ज्ञान देता है कि हे आत्माएं, तुमने सतयुग से लेकर के जन्म लिए, पहले एक जन्म मिला सतयुग का देवता धर्म में, फिर धीरे धीरे पुनर्जन्म हुए, सतयुग के बाद त्रेता आया, त्रेता के बाद द्वापर आया, द्वापर के बाद कलयुग आया, और अभी क्या है? अभी है कल्याणकारी संगम युग। इस संगम युग पर ट्रांसफर होती है, ये कलयुग बदल करके सतयुग बनता है, नरक बदल करके स्वर्ग बनता है, ये पतित सृष्टि खत्म होकर के पावन सृष्टि आती है, इसलिए परमात्मा को आना पड़ता है और ये ज्ञान देना पड़ता है। तो परमात्मा स्पष्ट सच्चा ज्ञान देता, वो ज्ञान का सागर है, उसको कहते हैं उसकी महिमा में सत चित्त आनंद, सच्चिदानंद, वो सत्य है, कहते हैं गॉड इज ट्रुथ, परमात्मा ही सत्य है, और वो जो बताता है वही सच्चा है। बाकी मनुष्यों ने तो अपनी मनमत ऐड कर दी, वो कहेंगे सतयुग था, स्वर्ग था, तो वहां पर भी श्री कृष्ण के समय कंस था, राम के समय रावण था, और बाबा क्या बताते ज्ञान देते कि कोई भी असुर, कोई भी दुख देने वाला सतयुग और त्रेता के अंदर नहीं होता, वो राम राज्य कहलाता है, वो स्वर्ग कहलाता है। तो ऐसा ज्ञान किसने दिया हम सबको? उस ज्ञान सागर शिव बाबा ने दिया, और ज्ञानी तो आत्मा बना दिया, इसलिए हम सब जानते हैं आधा कल्प ब्रह्मा का दिन है सतयुग त्रेता, और आधा कल्प ब्रह्मा की रात है द्वापर कलयुग। अब ये कलयुग की रात पूरी होगी, सतयुग का सवेरा आएगा, आना ही है। जैसे रात पूरी होती ना 24 घंटे के अंदर, 12 घंटे का दिन माना जाता, 12 घंटे की रात, तो 12 घंटे के रात का समय अब पूरा हुआ, अब दिन शुरू होने वाला है। तो परमात्मा हम सबको पढ़ा करके देवता बना रहे हैं। देवता बनने के लिए हम सबके आगे एक डिग्री है, आप बच्चे कोई डिग्री लेने के लिए पढ़ते होंगे, कोई एमए पढ़ेगा, कोई बीए पढ़ेगा, कोई सीए पढ़ेगा, कोई कुछ बनेगा, कोई कुछ बनेगा, लेकिन इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की पढ़ाई की डिग्री क्या है, कौन बताएगा? इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो हम पढ़ते हैं उस पढ़ाई से हमें कौन सी डिग्री मिलेगी? हाँ बोलो बच्चे, बोलो डिग्री बताओ। देवी देवता तो पद है हा? क्या सतयुग में लक्ष्मी नारायण बनेंगे, वो डिग्री नहीं है, डिग्री बताओ जी। 21 जन्मों की बात सही है, डिग्री बताओ ना। जैसे एमए बीए बहुत बड़ी बड़ी डिग्री मिलती है ना, ऐसे हमारी डिग्री क्या होगी? अभी डिग्री नोट करो, मैं बताता हूं। हम सब जो पढ़ रहे हैं ईश्वरी विश्वविद्यालय में मुरली, उस मुरली के द्वारा हमको डिग्री मिलेगी सर्वगुण संपन्न, सर्वगुण संपन्न, एक भी गुण कम नहीं होगा। 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, याद रखेंगे अपनी डिग्री। ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय में अगर आप रेगुलर पढ़ेंगे अमृत वेले से रात्रि तक, ज्ञान योग धारणा सेवा, ये चार सब्जेक्ट बाबा ने पढ़ाई हैं, और इन चारों सब्जेक्ट पर अगर आपका पूरा ध्यान है तो ये डिग्री मिल जाएगी। जब तक ये डिग्री नहीं मिली है तब तक हम पढ़ते रहेंगे। समझा, ऐसे नहीं आप 15 साल के हो गए, 20 साल के हो गए, पढ़ाई पूरी हो गई। अगर यहाँ देखो मेरी दादी जानकी की आयु कितनी है, 101 तो पूरा कर दिया, 102 चल रही है। 102 वर्ष की आयु में भी वो अपने को क्या कहती हैं, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं भी पढ़ रही हूँ। इसलिए कितनी भी बड़ी आयु हो जाएगी, जब तक संगम युग है और जब तक हमारे अंदर सर्व गुण नहीं आए, जब तक सर्व कलाएं नहीं आई, जब तक हम संपूर्ण निर्विकारी नहीं बने, जब तक सर्व मर्यादाओं में पुरुषोत्तम नहीं बने, तब तक हमारी पढ़ाई चलती रहेगी। जब तक जीना है तब तक पढ़ना है। ये 2, 4, 6 साल का कोर्स नहीं है। ये 3 साल में ये डिग्री ले लिया, 4 साल में ये ले लिया, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, बैरिस्टर बन गए, लेकिन ये डिग्री के लिए जब तक जीना है तब तक पढ़ना है। हम सीख करके बड़े नहीं हो जाएंगे, सीखते रहेंगे। क्यों? पढ़ाने वाला सुप्रीम टीचर परमात्मा है। पढ़ाने वाला केवल एक टीचर, बाकी उसके नायब टीचर बहुत हैं, सहयोगी बहुत हैं, लेकिन सबका सुप्रीम शिक्षक कौन? एक शिव बाबा। 3 संबंध हैं बाबा के साथ असली। एक है पिता, बाप कहते हैं हम उसको, दूसरा शिक्षक और तीसरा सतगुरु। जब ये 3 संबंध से बाबा हम सबको ज्ञान देता तो बाप रूप से बच्चे 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 बहुत प्यार करता, पालना करता, हम सबको हर प्रकार की सुविधा देता, बड़ा करता, और फिर शिक्षक बन करके पूरा ज्ञान दे करके नॉलेज फुल त्रिकाल दर्शी त्रिलोकी नाथ सुदर्शन चक्रधारी। सुदर्शन चक्रधारी कौन था? विष्णु। विष्णु के हाथ में दिखाते ना चक्र, लेकिन उसमें दिखाते हैं विष्णु के हाथ में चक्र था तो उसने चक्र घुमाया और असुरों का गला काट दिया। अब वो तो डबल अहिंसक थे, देवताएं तो डबल अहिंसक थे, हिंसा कैसे करेंगे? तो ये कोई चिन्ह प्रतीक है। इसलिए 4 अलंकार जो दिखाए हैं विष्णु के हाथ में, किसको किसको पता है विष्णु के हाथ में 4 अलंकार हैं? हैं कौन कौन से हैं बोलो, नंबर वार बोलो, एक खड़े होके बोलो, एक एक बोलो खड़े होके। कोई शंख चक्र गदा और पदम। शंख किस लिए दिया? देवताओं को जरूरत है शंख बजाने की? ये ज्ञान का शंख ब्राह्मण बजाते हैं। ये ब्राह्मण जन्म में हम ज्ञान सुनाते हैं दूसरों को, ये शंख है, उसका प्रतीक शंख है। और स्वदर्शन चक्र क्या है? स्वमाना आत्मा, उसका पूरे चक्र का दर्शन, कैसे सतयुग में आई, फिर त्रेता में आई, फिर द्वापर में आई, फिर कलयुग में आई, कैसे उसने चक्र लगाया, उसका स्वदर्शन। स्थूल में कोई चक्र नहीं है गला काटने वाला, लेकिन अगर स्वयं के जन्मों का ज्ञान हमारे पास है, उसका हम दर्शन करते हैं, तो विकारों का गला कट जाता, अपने आप विकार समाप्त हो जाते। तो इसलिए परमात्मा हम सबको कहते हैं, मेरे स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे, सदा स्वदर्शन चक्र ऐसे घुमाते रहो, उल्टा नहीं घुमाना। उल्टा घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा? स्वदर्शन चक्र अगर ऐसे की बजाय ऐसे चला दिया तो क्या होगा? परदर्शन हो जाएगा, दूसरों का दर्शन। तो बाबा हम सबको मना करता है, बच्चे कभी भी परदर्शन नहीं करना, स्वदर्शन करो, स्वचिंतन करो। एक स्लोगन लिखना, याद रखना बाबा का, बहुत अच्छा स्लोगन बाबा का है, स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है। अगर अपने इस जीवन में हमें उन्नति करनी है, अपनी पढ़ाई में नंबर आगे जाना है, तो दूसरों को नहीं देखना, स्वचिंतन करना, स्वयं का चिंतन, स्वयं का दर्शन, तो उन्नति होती रहेगी। और स्वदर्शन के बजाय अगर पर दर्शन किया तो स्लोगन आता है, पर दर्शन पर चिंतन पतन की जड़ है। स्वदर्शन स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है, पर दर्शन पर चिंतन पतन की जड़ है। तो बाबा ने हमको सीधा चक्र चलाना सिखाया है। बच्चे अपने आप को देखो, मैं क्या था? मैं देवता था, सर्वगुणों से संपन्न था, संपूर्ण निर्विकारी था, इतना पावन था। धीरे धीरे हमारा गिरावट आई और कलयुग के अंदर जब हम पतित बन गए, कोई गुण नहीं रहे, कलाहीन हो गए, तब शिव बाबा को आना पड़ा और ज्ञान दे करके फिर से वो डिग्री दे रहा है। तो सभी बच्चे इस पढ़ाई से, मुरली से, मुरली का महत्व क्या है? ये मुरली ही हमें सर्व गुणों से संपन्न बनाने वाली है, सर्व कलाओं से संपन्न बनाने वाली है, स्वदर्शन चक्रधारी बनाने वाली है। तो पहला दिया शंख, दूसरा चक्र और तीसरा गदा। दिखाते ना, हनुमान के हाथ में गदा थी और गदा के आधार से वो किसी को भी मार के भगा देता था। अब बाबा कहते हैं, बच्चे ऐसे कोई स्थूल में थोड़ी किसी को मारना, गदा है किसके लिए? विकारों पर जीत प्राप्त करने के लिए, बुराइयों को जीतने के लिए ज्ञान की गदा है। और पद्म हमारे पवित्रता का प्रतीक चिन्ह है। कमल फूल को पद्म कहा जाता, कहते हैं देवताओं के कदम में पद्म थे, पवित्रता की प्रतीक चिन्ह है, वो निशानी है। तो ये जब हम ब्राह्मण आत्माएं चारों चीजों को पालन कर लेती, शंख बजाना ज्ञान का शुरू करती, स्व का दर्शन करती, स्वदर्शन चक्र फिराती और विकारों को माया को गदा से भगा देती और पवित्र जीवन जीती हैं, तब हम विष्णु के समान नर श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी पद पाती है। तो ये सारा ज्ञान, ये सारी समझ स्वयं ज्ञान सागर शिव बाबा हम सबको अभी दे रहे हैं। हर एक बच्चे को ये डिग्री लेने के लिए रोज एक घंटा पढ़ना है बस। वो तो आप कितना भी पढ़ो, 24 घंटे में 10 घंटा पढ़ो, लेकिन ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय की पढ़ाई, रोज एक घंटा पढ़ना। पहले ज्ञान की सब्जेक्ट को अच्छी तरह से समझ गए तो ज्ञान के बाद योग लगाना बड़ा सहज हो जाएगा। दूसरी सब्जेक्ट, योग किस लिए हम लगाते? योग क्या है? सीखा है सभी योग? योग वो मैं प्राणायाम वाला नहीं, हठ क्रियाओं वाला नहीं, एक्सरसाइज नहीं, वो तो दुनिया वाले योग के नाम से समझते हैं यही योग है। लेकिन बाबा ने जो योग सिखाया वो राजयोग सिखाया, जिसमें आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन होता है, जिसमें उसके साथ हमारा संबंध होता है और उस संबंध के आधार से परमात्मा की शक्तियों को हम ग्रहण करते हैं। तो योग में हम क्या करते हैं? जब योग करते हो तो क्या करते हो? मन बुद्धि को शांत करके, एकाग्र करके परमात्मा को सब संबंधों से याद करते हैं और कुछ नहीं करते। माला नहीं जपते, मूर्ति नहीं लेते, पूजा नहीं करते, आरती नहीं करते, लेकिन बाबा को प्यार से याद करते हैं, उसके गुणों को याद करते हैं। बाबा हमारा ज्ञान का सागर है, प्यार का सागर है, सुख का सागर है, शांति का सागर है, ऐसे बाबा की महिमा करते हैं और बाबा के साथ संबंध जोड़ करके उनके प्यार में खो जाते। ये योग, ये शिव बाबा ने सिखाया। अब इस योग से क्या होगा? राजयोग अगर आप अच्छी तरह से रोज करेंगे तो आपकी आत्मा बहुत शक्तिशाली बन जाएगी, क्योंकि परमात्मा सर्वशक्तिमान है, सर्व समर्थ है, सर्व गुणों का सिंधु है। अगर उसके साथ थोड़े समय भी कनेक्ट हो गए, कनेक्शन जोड़ लिया, तो उसकी सब शक्तियां आपके अंदर आती जाएंगी, सर्व गुण आते जाएंगे, सर्व कलाएं आती जाएंगी। इसलिए रोज आप कोई भी पढ़ाई करो, कितना भी बिजी हो, लेकिन सवेरे सवेरे पहले पहले उठ करके क्या सिखाया गया आपको? चार बजे उठ करके कम से कम आधा घंटा बाबा को याद करो। पहले पहले योग करो, बहुत प्यार से याद करो, अच्छे अच्छे गीत बजाओ, बाबा की महिमा गाओ, बाबा के प्यार में खो जाओ, बाबा की शक्तियां आपके अंदर आएंगी और बाबा आपको गाइड करेगा। तो राजयोग अगर रोज आप करेंगे तो आपकी काया निरोगी बन जाएगी, आत्मा कंचन बन जाएगी, पावन बन जाएगी। जो इसके अंदर विकारों की खाद पड़ गई है, जो अनेक प्रकार की मैल आ गई है, उससे आप मुक्त हो जाओगे। इसलिए रोज योग करना, योग के लिए समय निकालना, जब समय मिले 3 मिनट का गीत बजता है ना, मन को एकाग्र कर लो, एकदम शांत हो जाओ। मैं आत्मा हूँ, इस भ्रकुटी आसन पर निवास करती हूँ, मैं एक लाइट हूँ, मैं एक ज्योति स्वरूप हूँ, और ऐसे स्वरूप का चिंतन करते करते बाबा के प्यार में खो जाओ। जैसा मैं हूँ ऐसे मेरा बाबा है, उसका रूप भी कोई बड़ा नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, वो भी निराकार है, ज्योति बिंदु है, और वो हमारा पिता है, हम उसके बच्चे हैं, हम एक आत्मा है, वो परमात्मा है। तो ऐसे याद करते करते उसकी शक्तियां आपके अंदर आ जाएं, आपकी चलन से, चेहरे से, आपके बोल चाल से पता चलेगा योगी है, चंचलता खत्म हो जाएगी, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कभी मुख से कुवचन नहीं निकलेगा, कभी भी कोई भी ऐसा गलत काम नहीं होगा, क्योंकि बाबा आपको गाइड करेगा, आपके साथ रहेगा, आपको मदद करेगा। इसलिए रोज आधा घंटा अमृत वेला और आधा घंटा शाम को, कम से कम सभी बच्चे पढ़ाई के दौरान 1 घंटा बाबा के लिए निकालो। जैसे आजकल मोबाइल सबके हाथ में होता है ना, तो मोबाइल को चार्ज करने के लिए अगर पावर हाउस से न जोड़ो तो दूसरे दिन मोबाइल काम करेगा नहीं, बैटरी चार्ज करनी पड़ती है ना। तो ऐसे ही आत्मा की बैटरी को बाबा के साथ जोड़ देंगे तो उसकी शक्तियां आएंगी और आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो जाएगी। फिर कोई भी कर्म करेंगे तो बाबा साथ रहेगा, बाबा टच करेगा, बाबा मदद करेगा। तो दूसरी सब्जेक्ट मुरली के अंदर योग के ऊपर आती है, और योग की सहज विधि बाबा क्या सुनाता, मेरे बच्चे अपने को आत्मा निश्चय करके मुझे याद करो, देह नहीं, ये रबड़ है। विधि क्या होती है, कनेक्शन जोड़ने की विधि क्या होती, मान लो ये कनेक्शन जोड़ा जाता है तो इसकी विधि क्या है, इसके अंदर जो तार है ना, इस रबड़ के नीचे तार को तार से जोड़ते हैं। अगर पता ना हो किसी को, रबड़ सही जोड़ेगा तो करंट आएगी नहीं आएगी, तो क्या करते हैं, तार को छील देते हैं, रबड़ को उतार देते हैं और फिर तार को तार से जोड़ देते हैं, करंट शुरू हो जाती। तो शिव बाबा को ये देह रूपी रबड़ नहीं है, जन्म मरण में तो आता नहीं है, शरीर है नहीं, तो शिव बाबा के साथ कनेक्शन जोड़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमारे ऊपर, हमारी आत्मा की तार के ऊपर ये रबड़ आ गई, तो इस रबड़ को, इस देह को भूलना पड़ेगा। तो हम इस देह से न्यारे होकर के क्या समझते हैं, हम एक आत्मा हैं, हम एक निराकार स्वरूप ज्योति बिंदु हैं, और जब समान बन जाते हैं बाबा के तो हमारा कनेक्शन जुट जाता, और कनेक्शन जुटने से करंट आती, बाबा की शक्तियां आती। अगर वो शांति का सागर है तो हम शांत स्वरूप हैं, अगर वो प्यार का सागर है तो हम प्यार के स्वरूप हैं, अगर वो सुख का सागर है तो हम सुख के स्वरूप हैं। तो ये योग बाबा ने सिखाया, कोई देहधारी नहीं सिखा सकता, यही गीता में वर्णित राजयोग है। जिस राजयोग से कर्मेंद्रियां हमारे कंट्रोल में आ जाती, आज भी बाबा के वरदान में क्या था, बच्चे स्वराज्य अधिकारी बनो, स्वयं पर राज्य करना सीखो। स्वयं पर राज्य करना माना मन, बुद्धि, संस्कार और ये जो कर्मेंद्रियां हैं, इन पर पूरा पूरा राज्य होना चाहिए। तो बाबा हम सबको इतना सहज योग सिखाता, इसके लिए कोई आंख नहीं बंद करना, कोई कान बंद नहीं करना, कोई माला नहीं जपना, कोई प्राणायाम नहीं करना, कोई आसन नहीं लगाना, बहुत सहज से, मेरा बाबा है, मैं बच्चा हूँ, मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, वो मेरा शिव बाबा पिता है। तो जब बाबा को याद करो ना तो प्यार इमर्ज होना चाहिए, बाबा आप हमको मिल गए, आपको मैंने कितना समय से ढूंढा, भक्ति के पिछले जन्मों में बहुत भक्ति आपकी की, तभी तो आप मिले हो। ऐसे बाबा से बातें करना, बाबा के समान स्थिति में बैठना, उनसे संबंध जोड़ना, ये योग है। और ये राजयोग बाबा की मुरली में रोज सुनाया जाता है। ब्रह्मा बाबा भी सुनाता है, मैं कैसे योग करता हूँ। ब्रह्मा बाबा को देखा कैसे योग करता है, देखा है सबने कैसे योग करता है ब्रह्मा बाबा। बाबा के कमरे में जाओ, देखो बाबा बैठा है योग में, ऐसे आसन लगा हुआ है, कमल आसन में बैठा है, अर्ध पदम आसन में बैठा है, आंखें खुली हुई हैं, ध्यान शिव बाबा में ऊपर। तो ब्रह्मा बाबा कहता है, जैसे बच्चे मैं बाबा को याद करता हूँ ना, मैं बहुत प्यार से बातें करता हूँ, मेरा बाबा है, मैंने बहुत भक्ति की है, मुझे अभी मिला है, मुझे देवता बनाएगा, तो मैं ऐसे ऐसे मीठी मीठी बातें करता हूँ, तो ये भी एक योग है। तो ऐसे आप सभी भी ऐसे योगी बनना, ठीक है। तो ऐसा योग बाबा सिखाता है। तीसरा क्या सिखाता है, तीसरी सब्जेक्ट क्या पढ़ाता है, धारणा। और वो धारणा क्या है, दिव्य गुणों की धारणा। जो देवताओं के गुण हम सब गाते आए, जिन देवताओं की हम महिमा करते आए, वो सब दिव्य गुण इस समय हमको धारण करना। ऐसे मनुष्य देवता नहीं बनेगा, मनुष्य को देवता बनने के लिए दैवी गुण धारण करने पड़ेंगे। तो इस संगम के समय में धारणाएं हमारी मूल क्या हैं? सबसे पहली धारणा है पवित्र जीवन, शुद्ध खान पान। और एक बात का बहुत ध्यान रखना, बच्चों को सबसे ज्यादा ध्यान रखना उस बात का धारणा के अंदर, कौन सा? बाबा कहता है, बच्चे संग दोष में कभी नहीं आना। कोई बाजार में होटल में खाने जाता है, सिनेमा देखने जाता है, गंदी बातें करता है, कोई कुछ भी अपनी ड्रेस रंग बिरंगी पहन करके घूमता है, कहता हमारे साथ चलो, अभी तुम्हारी उम्र थोड़ी है भगवान को याद करने की। तो बाबा कहता है, संग से अपने को बचाना। संग के लिए कहावत बाबा ने सुनाई है, पता कौन सी? संग तारे कुसंग डुबोए। अगर सच्चा संग होगा ना, अच्छे लोगों का संग होगा, तो पार हो जाओगे। और अगर गलत संग कर लिया, गाली देने वाले का, बुरा भला बोलने वाले का, इधर उधर परचिंतन करने वाले का, अवगुण बोलने वाले का, चोरी करने वाले का, झूठ बोलने वाले का, अगर ऐसा संग कर लिया तो क्या होगा, ये डूब जाएगी जीवन, कभी भी अच्छे नागरिक अच्छे लोग नहीं बन पाएंगे। तो बाबा हम सबको संग की बहुत परहेज सिखाता है। तीसरी धारणा क्या बताता है, बच्चे शुद्ध अन्न खाना। ये अन्न से मन बनता, मन शुद्ध होगा, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो मन शुद्ध तब होगा जब अन्न शुद्ध होगा। इसलिए सब ध्यान रखना, इस ब्राह्मण जीवन के अंदर ये जो हम खाते हैं ना, उसके अंदर देखो बाबा के घर में क्या मिलता है, इसको क्या कहते हैं, ब्रह्मा भोजन। ब्रह्मा भोजन के अंदर लहसुन नहीं, प्याज नहीं, कोई ऐसी तली गली बहुत तेज मिर्च मसाला नहीं, सिंपल भोजन, जिससे मन बहुत शुद्ध बन जाए, विचार हमारे अच्छे अच्छे चलें। इसलिए शुद्ध अन्न, और वो भी भगवान की याद में रह करके बनाना है, और वही बनाया हुआ खाना है। तो अपने अपने घरों में भी आप सब बहुत शुद्धता के साथ बाबा को भोग लगा करके, बाबा को खिला करके शुद्ध अन्न खाएंगे ना, तो मन शुद्ध रहेगा। तो हमारी धारणाएं क्या हैं, शुद्ध अन्न, सत्संग, दिव्य गुणों की धारणा। गुण क्या है, शांति, प्रेम, आनंद, हर्षित मुक्ता, मधुरता, संतुष्टता, सरलता, शीतलता, बहुत सारे गुण हैं। देवताओं के 36 गुण गाए हुए हैं। तो जब हमारे जीवन के अंदर गुण आते जाते, दैवी गुण आते जाते हैं, तो हम सत्य धर्म की स्थापना के निमित्त बनते हैं। धारणाओं से धर्म की स्थापना होती है, तो बाबा जो धारणाओं पर ध्यान खिंचवा रहा है बहुत अंडरलाइन कराता है। आज पवित्रता की धारणा पर कितनी मुरली चली, बच्चे गुस्सा नहीं करना, विकारों में नहीं जाना, बहुत पवित्र जीवन जीना। बाबा आज जैसे एकदम स्ट्रिक्ट धर्मराज की तरह मुरली चला रहा था, अगर करोगे तो ऐसा होगा, इतनी सजाएं खानी पड़ेंगी, बहुत बाबा सिखा रहे थे। तो ऐसे ही ये गुणों की धारणा, पवित्रता की, नम्रता की, सरलता की, शीतलता की, संतुष्टता की, अगर ये गुण आपके जीवन में आ जाएंगे तो देवता बन जाएंगे, सत धर्म आ जाएगा, ये भारत भूमि पर देवी देवताओं का राज्य हो जाएगा। तो इसलिए तीसरी सब्जेक्ट बाबा ने पढ़ाई है दैवी गुणों की, और चौथी सब्जेक्ट हम सब की विशेष है सेवा। क्या सेवा करनी? सेवा का अर्थ होता है सुख देना है, सुख लेना है, न दुख देना न दुख लेना। सेवा उसको कहते हैं जिस सेवा से लोग खुश हों, प्रसन्न हों, और वो प्रसन्न होकर के हमको दुआएं दें। तो बाबा ने हमको ज्ञान योग धारणा सिखा करके पहले हमारी जीवन इतनी अच्छी बनाई जो उस जीवन से सेवा हम करें। सबको सुख देना, कभी भी कोई को गुस्से में आके बोलना नहीं, गाली नहीं देना, झगड़ना नहीं। तो ऐसा अगर सुखदेव बन जाएंगे तो आपको कहेंगे सच्चे सेवाधारी। सेवा भी कई प्रकार की है। हम सबको बाबा ने मन से सेवा, मनसा सेवा सिखाई। जब योग में बैठते हैं ना तो सबके प्रति बहुत अच्छे अच्छे शुभ भावना वाले संकल्प करते हैं। तो एक मनसा सेवा, बाबा कहते हैं मनसा से शक्ति का दान करो, ये मनसा सेवा सिखाई। फिर वाचा सेवा, वाचा सेवा से ज्ञान दान करो, जो कोई संबंध में आए उसको ज्ञान दो कि आप कौन हो, आप कहाँ से आए हो, आपका धर्म क्या है, आप किस लिए आए हो, ज्ञान दान दो। और कर्मणा से गुणों का दान दो, जो कर्म करो ना उससे लोगों को लगे कितना प्यार से करता है, कितना अच्छा करता है, कितना सबको सुख देता है। तो कर्मों से बाबा ने गुण दान करना सिखाया है। तो ये तीन प्रकार की सेवा, मनसा, वाचा, कर्मणा। और तीन प्रकार की सेवा सुनो, तन, मन, धन। बाबा के कई बच्चे होते हैं ना जो खर्चे के लिए भंडारी मम्मी पापा देते हैं, वो पैसा भंडारी में डालते हैं, कहते हैं हमारा भी बाबा के कार्य में पैसा सफल हो। नई दुनिया बाबा बना रहा है, बाबा नई दुनिया बना रहा है, तो नई दुनिया में हमारा भी कुछ सहयोग लगे। तो बड़े बच्चे कई होशियार होते हैं, मम्मी पापा खर्चे के लिए देंगे, बाहर नहीं खर्च करेंगे, बाबा के गोलक में भंडारी में डाल के आएंगे कि बाबा के भंडारी में मधुबन में जाएगा, हमारा भाग्य बन जाएगा। तो धन से बाबा की सेवा हम कर सकते हैं। और अगर तन अच्छा है तो गए बाबा के भंडारे के अंदर, यज्ञ के अंदर बर्तन उठाए, भोजन खिलाया, भोजन बनाने में मदद किया, सफाई किया, ये भी सेवा है, तन से सेवा, कर्मणा सेवा इसको कहते, तन से किया। और फिर मन, मन मना भाव, जितना मन बाबा में टिका लेंगे उतना सेवा होगी, अच्छा शांति का, सुख का वाइब्रेशन फैलेगा। तो बाबा ने कितने प्रकार की सेवा सिखाई? छह प्रकार की, तन, मन, धन, और फिर मनसा, वाचा, कर्मणा। ये सेवा करेंगे तो सबकी दुआएं मिलेंगी, सबसे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे सेवाधारी हैं, सब बहुत प्यार करेंगे। तीन सर्टिफिकेट आपको लेना है, तीन सर्टिफिकेट हरेक को लेना है। सर्टिफिकेट चाहिए ना, आप आए यहाँ पर कहेंगे हमको सर्टिफिकेट दो, हम यहाँ पर एक बाल शिविर में आए इसका सर्टिफिकेट दो। लेकिन बाबा कहता है मेरे बच्चों को और तीन सर्टिफिकेट लेने हैं। पहला सर्टिफिकेट लेना स्वयं स्वयं से संतुष्ट रहना है, संतुष्टता का तीन सर्टिफिकेट। मैं आत्मा अपने आप से संतुष्ट रहूं, पढ़ाई में संतुष्ट रहूं, संतुष्टता का पहला सर्टिफिकेट मैं अपने आप को दूं कि मैं संतुष्ट हूं। मैं यहां गया, बाबा के घर में आया, मैंने क्लासेज की, मैंने अच्छी मार्क ली, अच्छा सीखा, मुझे बहुत संतुष्टता हुई इस प्रोग्राम में आने से। तो पहला सर्टिफिकेट स्वयं से संतुष्ट। आप सब संतुष्ट हो? जो संतुष्ट है हाथ उठाओ। सब थोड़ा थोड़ा उठा रहे हैं, सब नहीं उठाते हैं। सब संतुष्ट हैं? कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? गर्मी तो लगी थोड़ी थोड़ी, गर्मी तो है, क्या करें है? लेकिन सब संतुष्ट हो ना? संतुष्ट हो तो जोरदार ताली बजाओ। अच्छा, दूसरा सर्टिफिकेट सुनो, आपसे सारा परिवार संतुष्ट है। दूसरा सर्टिफिकेट है परिवार से मिलना चाहिए। हमारे बड़े, हमारी दीदियां जो आपको लेके आई हैं, आपके माता पिता, आपके साथी बड़े जो हैं, वो भी सर्टिफिकेट दें, ये बहुत अच्छा बच्चा है, ये बहुत अच्छी बच्ची है, इसके अंदर बहुत अच्छे गुण हैं, ये बहुत सरल है, बहुत मिलनसार है, बहुत दूसरों को रिस्पेक्ट देने वाली है, तो क्या होगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो दूसरा सर्टिफिकेट लेना संतुष्टता का, परिवार की संतुष्टता का। और तीसरा सर्टिफिकेट किसका चाहिए? प्रभु परमात्मा का। वो भी तो सर्टिफिकेट देना कि मेरे बहुत अच्छे स्टूडेंट बच्चे हैं, बहुत अच्छी स्टडी करते हैं, बहुत आज्ञाकारी हैं, बहुत सपूत हैं, बहुत अच्छे ईमानदार हैं, वो वफादार हैं। तो ये जब बाबा कहेगा ना, तो कहता है सच्चे दिल पर साहेब राजी, जो मेरे ऐसे बच्चे सच्चे हैं, ईमानदार हैं, भगवान उनको सर्टिफिकेट देता है, उसकी दुआएं मिलें। ये गीत आता है, सुना होगा आपने, कहते हैं ले लो दुआएं माँ बाप की, तो उतर जाएगी गठरी पाप की। एक तरफ हम योग लगाते हैं और दूसरी तरफ पाप की गठरी उतारने के लिए क्या चाहिए? माता पिता की दुआएं। लौकिक में भी ये संस्कार भारत के अंदर बच्चों में डाले जाते कि सवेरे उठो, माँ बाप के चरण छू लो, वो खुश हो जाएं और आपको दुआएं दें। ये संस्कार है, ये माता पिता का रिस्पेक्ट माना जाता है। बाबा ने ये हमको नहीं सिखाया, बाबा ने चरण छूना नहीं सिखाया, झुकना नहीं सिखाया। कहते बच्चे तो सिर के ताज होते हैं, वो पैरों के जूती नहीं, पैरों के आगे नहीं झुकते। मेरे बच्चे तो मेरे सिर के ताज हैं। हो सभी सिर के ताज, सब बाबा के सिर के ताज बन के रहना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अंदर बाहर साफ रहना, सच्चे रहना, जो हैं जैसे हैं, कोई बात छिपाना नहीं। बाबा के आगे किसी की झूठ नहीं चलती। कुछ भी अगर कोई गलती हो गई ना, भूल हो गई, बाबा के कमरे में जाओ, बाबा के आगे बैठ करके चिट्ठी लिखो और बाबा को बोलो, बाबा अभी मैं ये नहीं करूंगी, ये मेरे से भूल हो गई, ये मेरे से गलती हुई, अब नहीं करेंगे। बाबा को सुनाएंगे ना तो बाबा खुश हो जाएगा। उसको क्या कहते हैं? भोलानाथ। शिव बाबा को क्या कहते हैं? भोलानाथ। बहुत भोला है, बहुत जल्दी राजी हो जाता है, भक्तों पर तो इतनी जल्दी राजी हो जाता। कहते हैं, एक कहानी सुनाता हूं, सुना होगा आपने, गज और ग्राह। गज हाथी को कहते हैं और ग्राह मगरमच्छ को कहते हैं। गज और ग्राह की कहानी किसको मालूम है? मालूम है? नहीं मालूम होगी, मैं बताता हूं। कहते हैं एक बार हाथी, गज है ना, पानी के अंदर जब जाता है तो खूब नहाता है, पानी अपने ऊपर डालता है। कैसे डालता है? सूंड से पानी उठाता है, नदी के अंदर गया, तालाब के अंदर गया, तो सूंड से पानी उठा के अपने ऊपर खूब डालता है, नहाता है। तो एक बार गज जो है ना, हाथी, नहाने के लिए एक तालाब में गया, तो तालाब के अंदर मगर रहता, मगरमच्छ जिसको ग्राह कहते हैं, तो मगरमच्छ ने हाथी को पकड़ लिया। आप क्या पकड़ा? उसका पैर अपने मुंह में ले लिया। जब मगर होता ना, मुंह खोलता है ना, बहुत बड़ा हो जाता, तो हाथी को पकड़ लिया पैर को और खींचने लगा। तो हाथी बेचारा क्या करे, था तो ताकत लेकिन कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि एक पैर मुंह में चला गया गज के। ग्रह के मगरमच्छ के, तो उसने क्या किया, वो सूंड से जो पानी था ना ऊपर ऐसे उछाला, तो ऊपर भोलानाथ शिव बाबा देख रहे थे, वो खुश हो गए कि ये हाथी जो है ना मेरे ऊपर पानी चढ़ा रहा है, मुझे पुकार रहा है, बड़ी जोर से चिल्लाया और चिल्ला करके वो पानी ऊपर की तरफ छोड़ दिया। तो भगवान ऊपर से देख रहे थे कि बच्चे के ऊपर कोई मुसीबत आई है, तो कहते हैं शिव बाबा भाग करके आ गए उसकी रक्षा करने के लिए, और उन्होंने फिर मगर को खत्म किया, मार दिया, छुड़ाया हाथी को। तो कहते गज को ग्रह ने खाया लेकिन खा नहीं पाया, वो भगवान को पुकारा तो भगवान ने उसकी मदद की। तो जब हम सब महारथी, बाबा कहता मेरे बच्चे महारथी हैं और माया जो है मगरमच्छ है, चारों तरफ से घूम रही है, तो कई बार माया जो है हमारे महारथी हाथी समान बड़े बलवान बच्चों को भी पैर से पकड़ के खींचने लगती है। लेकिन अगर बहुत दिल से कहते हैं मेरा बाबा, पुकारते हैं ऐसे प्यार से याद करते हैं, तो शिव बाबा भी भागता है ऊपर और फिर मदद करता है, माया को मार के ग्राह को भगा देता। तो आप सभी भोलानाथ बाबा को राजी रखना, उसे सर्टिफिकेट लेना कि भगवान मेरे पर राजी। कहते हैं बाप भगवान राजी तो क्या करेगा काजी, ठीक है, दुश्मन हमारा कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए बाबा को राजी करके बहुत संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना। तो ये तीनों सर्टिफिकेट एक एक बच्चे के पास, जो यहाँ पर शिविर में आए हो ना बाबा के घर में, एक स्वयं से संतुष्ट, खूब अच्छी तरह से मुरली सुनो, पढ़ो, बाबा के समान ज्ञान सागर बन जाओ। पता है मैं आपकी उम्र में 15 साल की उम्र में मधुबन में आ गया, 15 साल का था मैं, और पढ़ते पढ़ते आज देखो बाबा ने मुझे सब कुछ पढ़ा दिया। स्कूल और कॉलेज नहीं देखा मैंने, लेकिन कॉलेज में भाषण जरूर करता हूँ, यूनिवर्सिटी में भाषण कराता है बाबा मेरे से, और मेरे से पूछते आप कितना पढ़े हो, हम कहते हमारी पढ़ाई पूरी नहीं हुई, अभी पढ़ी तो रहे हैं, जब तक हमको पूरी डिग्री नहीं मिलेगी तब तक हम पढ़ते ही रहेंगे। और बाबा एक ही मुरली के द्वारा हमको फुल नॉलेज फुल बना दिया, ज्ञान सागर बना दिया, त्रिकालदर्शी बना दिया, त्रिलोकी नाथ बना दिया, बाबा पढ़ा रहा है, भगवान पढ़ा रहा, बाकी क्या करना। तो ऐसे स्टूडेंट बन करके बाबा से ये तीनों सर्टिफिकेट लेके दिखाना। लेंगे सभी, लेंगे लेंगे तो हाथ उठाओ। एक संतुष्टता का सर्टिफिकेट स्वयं की, एक संतुष्टता का सर्टिफिकेट परिवार हमारा संतुष्ट रहे, और एक बाबा हमको कहे वाह मेरा बच्चा वाह, बहुत आज्ञाकारी है, बहुत सपूत है, सवेरे सवेरे उठ के मेरे से गुड मॉर्निंग करता है, मेरी मुरली सुनता है, मेरी आज्ञा पर चलता है, तो बाबा खुश हो जाएगा। भोलानाथ है तो भोलानाथ को बाबा को प्रसन्न कर लो, सब दुआएं दे देगा, सब खजाने दे देगा, सहज पास करा देगा, मेहनत नहीं लगेगी पढ़ाई की। सवेरे सवेरे जाओ, जब पेपर जाना देना हो बाबा के कमरे में बैठ जाओ, बहुत प्यार से बातें करो, बाबा आज पेपर है, जो प्रश्न आने वाला है ना आप मुझे पहले से बता दो, तो आपको मदद करेगा और पास कर देगा, ठीक है। बाबा को साथी बना करके रखना, अलग नहीं होना, हमेशा समझो शिव बाबा मेरे साथ साथ ये भ्रकुटी में आकर के बैठ गया। कल बाबा ने क्या कहा, अगर कोई बच्चा कमजोर होता है ना, सामने वाला बड़ा होशियार होता है, तो मैं क्या करता हूँ बच्चे के बाजू में जाके बैठ जाता हूँ, फिर बाजू में बैठ करके फिर मैं ज्ञान सुनाना लगता हूँ, और जब मैं ज्ञान सुनाता हूँ तो उसका कल्याण हो जाता, उसका भला हो जाता। तो शिव बाबा तो किसी के तन में भी आके बैठ सकता है। तो जब भी कोई बात हो ना, पेपर देने जाओ, कोई परीक्षा आए, कोई बात आए, तो शिव बाबा को बुलाओ प्यार से, बाबा आप आओ, आपको हम आसन देते हैं, यहाँ बैठो और अपना काम कर दो, ठीक है, तो बाबा आपके पास आ जाएगा। भोलानाथ तो है ही, तो शिव भोलानाथ बाबा को बहुत प्यार से याद करके उसको सदा साथी बना करके रखना। और ये मुरली हमारे जीवन का श्वास है, जब तक जीना है तब तक रोज पढ़ना है, एक दिन भी मुरली मिस नहीं करना, आपको बाबा इसी मुरली से देवता बना देगा, इसी मुरली से एक श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन बन जाएगी, ब्राह्मण फरिश्ता बनेगा, फरिश्ता देवता बन जाएगा। तो ठीक है, बाबा की मुरली को समझकर चारों सब्जेक्ट में नंबर 1 लेकर के दिखाना। ओके, ओम शांति।